एक ऐसा रहस्य बता रहे हैं इंद्रिय निग्रह के विषय में जो कि बहुत ही व्यावहारिक है, अंग्रेजी में जिसे कहेंगे प्रैक्टिकल, कि जब तक हमें वो उत्तम रस का अनुभव नहीं होता तब तक इंद्रिय निग्रह असंभव है किसी भी स्तर पर, चाहे वो बड़ा विद्वान हो, चाहे ज्ञानी हो, ध्यानी हो, योगी हो, कर्मी हो, कर्म योगी हो, चाहे कोई भी हो। इसलिए इसी दूसरे अध्याय में ही भगवान उत्तम रस की चर्चा करते हुए भक्ति योग को प्रस्थापित किए। हालांकि भक्ति योग हमें देखने मिलता है भगवद गीता में 6 अध्यायों के पश्चात, 7वें अध्याय से फिर समझ में आता है कि हाँ भगवान अब भक्ति योग के विषय में जोर दे रहे हैं। लेकिन ये जो श्लोक हमने पिछले हफ्ते लिया, रस, रस का आस्वादन केवल भक्ति योग में ही किया जा सकता है। और एक और टीकाकार हमारे नहीं चल रहे हैं तो सूचित कर दीजिए आपके रिश्तेदार, मित्र इत्यादियों, शरद पूर्णिमा, कार्तिक का महीना प्रारंभ हो रहा है और शरद पूर्णिमा की रात भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला रचाई थी, मुझे याद आ गया। तो भगवान, इसे भगवान को याद आ गया था रास लीला, तो भगवान यहां पर 64 करोड़ सैनिकों से घिरे हुए रथ पर आरूढ़, और भगवान भी यहां पर देखिए, भगवान कोई रासलीला की पोशाक नहीं पहने हुए हैं, भगवान यहां पर एक योद्धा के जो आभूषण होते हैं वो सब पहने हुए परंतु ध्यान कर रहे हैं श्रीमती राधा रानी। और इसलिए इस श्लोक में चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि भगवान रसवर्जम, वो जो परम दृष्टवा भगवान ने अनुभव किया, अपनी सभी लीलाओं में भगवान ने जो परम दृष्टवा, सबसे उत्तम रस जो भगवान ने अनुभव किया, उसे याद करते हुए अर्जुन को बता रहे हैं कि इंद्रिय निग्रह के लिए ही अर्जुन, जब तक तुम्हें वो उत्तम रस प्राप्त नहीं होगा तब तक तुम इंद्रिय निग्रह नहीं कर पाओगे, कोई भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए परम दृष्टवा का अर्थ हमने समझा था भगवान के दृष्टिकोण की दृष्टि रखना, मेरे ख्याल से ये लास्ट स्लाइड था हमारे पिछले गीतामृत कार्यक्रम का। जैसे श्रील प्रभुपाद ने, हमने इसकी चर्चा की थी, कृष्णा कॉन्शियसनेस का एक डेफिनेशन जो श्रील प्रभुपाद ने दिया, कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑल्सो मीन्स टू सी एज कृष्णा सीज। भगवान का दृष्टिकोण रखना, इसे कृष्ण भावनामृत भी कहते। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करते हुए प्रथम अध्याय का शीर्षक क्या है, ये ऑब्जर्विंग दी आर्मीज, ये प्रथम अध्याय का शीर्षक था। तो क्यों इसका शीर्षक ऐसे दिया श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता एज इट इज में? फर्स्ट चैप्टर का टाइटल श्रील प्रभुपाद ने ऐसा क्यों दिया, ऑब्जर्विंग द आर्मीज? हु इज ऑब्जर्विंग द आर्मीज? अर्जुन, अर्जुन इज ऑब्जर्विंग द आर्मीज। अर्जुन सेनाओं को देख रहे हैं। तो इसके ऊपर पूरा चैप्टर, सेना को तो सभी देख रहे थे, वहां पर कोई आंख बंद कर तो खड़ा नहीं था, जितने 64 करोड़ सारे योद्धा थे वो सभी तो एक दूसरे की सेनाओं को देख रहे थे ना। तो ये इतना इतना बड़ा टाइटल दे दिया पूरे चैप्टर को, क्या विशेष है उस प्रथम अध्याय में कि श्रील प्रभुपाद ने प्रथम अध्याय का टाइटल रखा ऑब्जर्विंग द आर्मीज बाय अर्जुन. व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट दैट ऑब्जर्वेंस ऑफ अर्जुन? क्योंकि अर्जुन जिस दृष्टिकोण से सेनाओं का निरीक्षण कर रहे थे, प्रथम अध्याय में दुर्योधन भी निरीक्षण कर रहा है, वो भी विश्लेषण करता है अपनी कुरु सेना और पांडवों की सेना का. परंतु दुर्योधन और अर्जुन जो दोनों ऑब्जर्व कर रहे हैं एक दूसरे के आर्मीज को, दोनों में अंतर क्या था? अंतर ये कि यहां पर अर्जुन, उन्होंने जब सेनाओं को देखा तैनात, तो अर्जुन के मन में ये सारी ग्लानी, विषाद, वियोग, ये सब उत्पन्न हुआ. और दुर्योधन इत्यादि, दुर्योधन वो बहुत प्रसन्न हुआ कि हाँ फाइनली अब ये सब खत्म होने वाले हैं, मुझे राजगद्दी मिलने वाली है. दुर्योधन का वो दृष्टिकोण, अर्जुन का ये दृष्टिकोण, किसका दृष्टिकोण सही, किसका दृष्टिकोण गलत, क्या कहोगे? दोनों, बोथ आर ऑब्जर्विंग द आर्मीज, इसलिए प्रथम अध्याय का शीर्षक ये, बोथ आर ऑब्जर्विंग. दुर्योधन वॉज ऑल्सो ऑब्जर्विंग एंड अर्जुन वॉज ऑल्सो ऑब्जर्विंग. तो किसका दृष्टिकोण सही, किसका दृष्टिकोण गलत? हाँ? अर्जुन का सही था तो फिर दुर्योधन का सही होना चाहिए, यदि अर्जुन का गलत है तो दुर्योधन का सही होना चाहिए. दोनों का गलत था, दोनों का दृष्टिकोण गलत था. क्योंकि अर्जुन वो भी मोह के कारण युद्ध नहीं करना चाहते थे और दुर्योधन मोह के कारण युद्ध करना चाहता था. देखिए, बोथ वर अंडर इल्यूजन. दुर्योधन वॉज अंडर इल्यूजन एंड देयरफॉर वॉन्टेड टू फाइट फॉर हिमसेल्फ, एंड अर्जुन वॉज अंडर इल्यूजन एंड देयरफॉर डिडंट वॉन्ट टू फाइट अगेन फॉर हिमसेल्फ. तो जो हमने पिछले हफ्ते श्लोक लिया परम दृष्ट्वा, जिसकी व्याख्या हमने की कि भगवान श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से दोनों नहीं देख रहे थे, तो परम दृष्टवा था ही नहीं, न तो दुर्योधन के पास था न अर्जुन के पास था, क्योंकि दोनों अपने दृष्टिकोण से देख रहे थे सेनाओं को. तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जब तक हमें भगवद गीता का प्रामाणिक ज्ञान नहीं समझता, तब तक एक वस्तु को हम अलग अलग समय, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग दृष्टिकोण से देखेंगे. और हम एक हैं, ऐसे सैकड़ों देखिए संसार में, करोड़ों अरबों, वो कैसे देखते होंगे, इसलिए इतने मतभेद होते हैं. मतभेद कई बार दो व्यक्तियों के बीच में तो छोड़ दीजिए, वो तो खैर कलयुग का हॉलमार्क है, लक्षण है, क्या कलह, मतभेद होना, हमारे अंदर मतभेद हो जाता है कि नहीं? वही व्यक्ति, वही वस्तु, वही स्थिति, सब कुछ वही, एक समय हमारा एक मत होता है, दूसरे समय हमारा दूसरा मत होता है, और बिल्कुल विपरीत मत होता है. तो इसलिए ये जो पिछला श्लोक हमने लिया, ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी व्याख्या बहुत गहराई से समझनी है हमें. परम दृष्टवा, ये एक जो लाइन भगवान ने कह दी कि ये उत्तम रस हम तब चख पाएंगे जब हम भगवान श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से हर एक व्यक्ति को, हर एक वस्तु को, हर एक स्थिति को, इस पूरी सृष्टि को देखेंगे तब. तो अर्जुन ऑब्जर्विंग द आर्मीज, ये प्रथम अध्याय. और परिणाम क्या हुआ ऑब्जर्विंग द आर्मीज का? गांडीव छूट गया, पसीने पसीने हो गए. हाँ, रोमांच वे पतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है ऑब्जर्विंग द आर्मीज. हमारी भी स्थिति कई बार ऐसी होती है, जब हमारे जीवन में कोई समस्या कोई विपदा आती है तो हम सबसे पहले जो हमारा रिसोर्स है जो हमारी काबिलियत है जैसे अर्जुन अपनी काबिलियत दिखाते हुए प्रथम अध्याय में वो देख रहे थे वो मुआयना कर रहे थे तो हम भी उसी प्रकार से। और फिर हताश जब अर्जुन हो गए पूर्ण रूपेण हताश हो गए कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहां पर क्यों खड़ा हूं, तब अर्जुन का सौभाग्य क्या था कि रथ पर भगवान साक्षात थे। और जैसे ही अर्जुन ने भगवान के श्रीमुख से सुनने की स्वीकृति स्वीकार की, ये सबसे महत्वपूर्ण गुण अर्जुन का क्या था, ही वॉज रेडी टू हियर फ्रॉम द लोटस माउथ ऑफ कृष्णा, दैट वॉज द वन फॉरमोस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ अर्जुन। तो भगवान ने जब भगवद गीता सुनाना प्रारंभ किया अर्जुन को, तो अब अर्जुन उसी सेना को नहीं देख रहे थे। क्या कर रहे थे अर्जुन? अब अर्जुन भगवान की जो दिव्य दृष्टि है उसका इंस्टॉलेशन चल रहा था, है ना, होता ना कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन चलता है लोडिंग, तो डेटा लोड हो रहा था पूरा, नेक्स्ट नेक्स्ट होता है ना, नेक्स्ट चैप्टर सॉफ्टवेयर, जब आप कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो उसमें आता है नेक्स्ट 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 फिर फिनिश, फिर उसके बाद में क्या है रिस्टार्ट। रिस्टार्ट मतलब कि अब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है, अब आप इसको यूज कीजिए, ये नहीं कि शटडाउन। कई लोग भगवद गीता पूरा इंस्टॉल करने के बाद शटडाउन हो जाते हैं, तो फिर फायदा क्या है ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद उसको रिस्टार्ट कर उसको यूज करना है, जो अर्जुन ने किया। तो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेज क्या था, पहला ऑब्जर्विंग दी आर्मीज, फिर ऑब्जर्विंग ट्राइंग टू ऑब्जर्व थ्रू कृष्णास आईज। और यहां पर भगवान जो दिखा रहे हैं अर्जुन को, अब अर्जुन पूरी भगवद गीता सुनाने के पश्चात जब भगवान ने दिव्य दृष्टि दी अर्जुन को, भगवान कहते हैं अब देखो अर्जुन कैसी दिखती है, वही सेना वही खड़ी है वहां पर, इतने टाइम से वही सेना खड़ी है। पूरी भगवद गीता सुनने के पश्चात भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं, अब देखो वापस कैसी दिखती है सेना, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हो अभी अर्जुन। तो वही अर्जुन वही कुरुक्षेत्र वही सेना भगवद गीता श्रवण करने के पश्चात जब अर्जुन उस सेना को देखते हैं तो अर्जुन क्या करते हैं, ये पूरा गांडीव उठाया, तुणीर से बाण निकाल रहे हैं और भगवान जो रथ हांक रहे हैं, भगवान को पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। तो हमारे जीवन में भी भगवान को हमारे ऊपर इतना विश्वास हो जाना चाहिए कि भगवान हमारा रथ यदि हांकें तो हां वो पीछे मेरी सेवा में लगा हुआ होना चाहिए, ये नहीं कि बार बार रथ रोक कर पीछे मुड़कर फिर भगवद गीता शुरू करनी पड़ेगी। कई बार हमारी स्थिति ऐसी हो, हम गांडीव तो उठा लेते हैं, मतलब माला उठा लेते हैं अपनी, हमारा गांडीव क्या हमारी माला, माला तो उठा लेते हैं और उसके बाद में फिर जैसे ही माला शुरू होती है फिर वो वेपतुष्ट शरीर में शुरू हो जाता है, थर थर कांपने लगते हैं, एक एक राउंड दो राउंड उसके बाद में पता नहीं कुछ भी ऑब्जर्विंग नहीं होता, सारी आंखें ही बंद हो जाती, कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हो रहा, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी, और फिर हमें वापस याचना करनी पड़ती है, फिर से एक और कार्यक्रम, फिर से एक लेक्चर सुनना पड़ता है, फिर से दूसरों को देखना पड़ता है ये लोग कैसे माला करना चाहते, बाकी सारे योद्धा लड़ रहे हैं मैं अकेला। तो यहां पर भगवान ने अर्जुन को जो दिव्य दृष्टि दी और उस दिव्य दृष्टि के बलबूते पर अब अर्जुन ने जब उस सेना को देखा तो वो क्या था, परम दृष्ट्वा निवर्तते, उत्तम रस के द्वारा वो अपनी आंखों में उस उत्तम रस का अंजन लगाकर अब अर्जुन सेनाओं का निरीक्षण करे, और केवल निरीक्षण मुआयना नहीं किए, वो सेनाओं को क्या देना है वो दिए। तो अब आज का श्लोक ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें अर्जुन अब इस उत्तम रस के विषय में सुनने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को एक और प्रश्न पूछ रहे हैं। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभं मनः यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभं मनः यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभं मनः। भगवान कह रहे हैं हे कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन, भगवान अर्जुन को कुंती पुत्र पुकार रहे हैं, हे कौन्तेय पुरुषस्य, वो पुरुष हालांकि विपश्चित, यहां पर पुरुषस्य के पश्चात शब्द है विपश्चित, विपश्चित का अर्थ है विवेक बुद्धि रखने वाला, कौन सा पुरुष, विवेक बुद्धि रखने वाला पुरुष भी भगवान कहते हैं यततो इंद्रियाणि प्रमाथिनि, इंद्रियों के प्रमत्त स्वरूप के वजह से ऐसा विवेक बुद्धि वाला मनुष्य भी हरन्ति मनः, ये इंद्रियां उसका मन हर लेती हैं। तो अर्जुन का ये प्रश्न था, अर्जुन के एक प्रश्न का उत्तर भगवान ने दिया है। अर्जुन का प्रश्न था कि भगवान आपने उत्तम रस के विषय में तो बताया, परम दृष्टवा के विषय में बताया, तो अब यदि किसी को वो परम दृष्टवा प्राप्त नहीं हुआ है, उसने प्रण ले लिया है किसका, इंद्रिय निग्रह का, जैसे इस्कॉन में हम दीक्षा के समय प्रण लेते हैं, मैं मांसाहार नहीं करूंगा, मैं जुआ नहीं खेलूंगा, मैं चाय कॉफी नहीं पीऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, सब कुछ इतना प्रण लेते हैं, तो प्रण तो ले लिया मतलब ये सब छोड़ दिया, लेकिन अगर परम दृष्टवा ही नहीं मिला तो होता है ना धोबी का कुत्ता है गधा, क्या होता है कुत्ता, धोबी के तो गधे होते हैं ना, जो भी है ना इधर का ना उधर का रहता, तो इसे सब कुछ छोड़ दिया लेकिन अगर परम दृष्टवा नहीं मिला उसे तो फिर क्या होगा, क्योंकि बहुत से लोग यही चिंता में रहते हैं इस्कॉन में आने से पहले कि इस्कॉन में जाएंगे वो सब तो छुड़ाने वाले हैं, जो जो मुझे इतना प्रिय है, मेरे मन को जो इतना प्रिय है वो सब छुड़ाने वाले हैं, लेकिन कुछ पकड़ाएंगे क्या, छुड़ा तो दिया कुछ पकड़ाओ भी तो उसके बदले में, क्या ऐसे ही खाली हाँ ठंडन गोपाल भेज देंगे मुझे। तो अर्जुन का यही प्रश्न कि यदि उसे वो परम दृष्टवान नहीं प्राप्त हुआ तब फिर क्या होगा, तो भगवान कहते हैं यदि परम दृष्टवा प्राप्त नहीं हुआ तो चाहे वो कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना भी बड़ा विवेकधारी बुद्धि वाला हो, चाहे कितना भी बड़ा तपस्वी हो, योगी हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, ये हो वो हो, हरन्ति प्रसभं मनः, ये इंद्रियां जो हैं वो उसे उसके मन को हर के, यहां पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं किडनैप, है ना, किडनैप, हरण कर लेना। तो कौन हरण कर लेता है यहां पर? अभी मन को हरण कर रही हैं इंद्रियां। द सेंसेस विल किडनैप द माइंड। विच सेंसेस? दो सेंसेस विच आर वेरी इंपेस्टुअस, श्रील प्रभुपाद लिख, जो एकदम प्रमाथिनिया, यहां पर जो शब्द है प्रमाथिनी, प्रमथ इंद्रियां, वो हरण कर लेते हैं। हाँ, अच्छा श्लोक है ना। तो आज के हमारे चर्चा के विषय रहेंगे कि पिछले श्लोक से आज के श्लोक का संबंध, अर्जुन के लिए कौंतेय नाम का प्रयोग भगवान ने किस लिए किया, अर्जुन के किमासीत प्रश्न का उत्तर। यदि आपको याद है अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था, किम आसीत ब्रजेत किम। शास्त्रों से कुछ उदाहरण हम लेंगे दोनों, कैसे हरन्ति प्रसभम मनः और कैसे उन्होंने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया परम दृष्टवा के वजह से और मन को भी। काम रूपी शत्रु के तीन निवास स्थान भगवद गीता में भगवान ने कहे हैं, कौन कौन से हैं? भगवान के मनोहर नाम की व्याख्या, भगवान का एक नाम है मनोहर। तो सर्वप्रथम जैसे कि हमने ये प्रश्न लिया अर्जुन का, तो पिछले श्लोक में उत्तम रस के अनुभव द्वारा इंद्रिय संयम की व्याख्या भगवान ने की कि इंद्रिय निग्रह बहुत शुष्क होता है, इट्स वेरी ड्राई, जब तक कि परम दृष्टवा नहीं आए। वो इंद्रिय निग्रह बहुत ड्राई है, नहीं कोई टिक पाएगा। अब यहां पर भगवान बता रहे हैं कि उत्तम रस के अभाव का परिणाम क्या होता है, कि हरन्ति प्रसभम मनः, वो परिणाम भगवान बता रहे हैं। तो 11वें स्कंद का ये एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसमें नव योगेंद्र वो महाराज निमि को उपदेश दे रहे हैं। और ये श्लोक हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहां पर हमने हाईलाइट किया है, येलो में देखिए क्या है, वो इंद्रियवान। और आज के श्लोक में फोकस भगवान किस पर कर रहे हैं? इंद्रिय पर। कोनुराजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्युर उपास्यम अमरोत्तमई। माई डियर किंग, इन द मटीरियल वर्ल्ड द कंडीशन सोल्स आर कन्फ्रॉन्टेड बाई डेथ एट एवरी स्टेप। देर फोर हु अमंग द कंडीशन सोल्स वुड नॉट रेंडर सर्विस टू द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड मुकुंद हु इज वर्शिपेबल इवन फॉर द ग्रेटेस्ट ऑफ लिबरेटेड सोल्स। कि कौन ऐसा मूर्ख होगा, कोनो राजन इंद्रियवान, कौन ऐसा मूर्ख होगा कि पग पग पर जहां पर मृत्यु है इस संसार में, उस मृत्यु से नहीं बचने का उपाय ढूंढेगा? कौन मूर्ख होगा? यदि कोई नहीं कर रहा तो मूर्ख है भगवान, यहां पर नव योगेंद्र कह रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने बद्ध जीवों के लिए शब्द इस्तेमाल किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, गौर करने लायक है। इंद्रियवान, जैसे कि हम चर्चा करते हैं किसकी, भगवान, शीलवान, रूपवान, गुणवान, धनवान इत्यादि। यहां पर हम बद्ध जीवों की व्याख्या की गई है इंद्रियवान। जैसे भगवान श्री कृष्ण को भगवान इसलिए कहा जाता है कि वो धारण किए हैं ऐश्वर्यों को, 6 ऐश्वर्यों को, तो फिर हमने किसको धारण किया है? इंद्रियों को। तो हम जो इंद्रियों को धारण किए हुए हमें उपाधि मिली है इंद्रियवान। तो अब क्या ये इंद्रियां जो हमने जिन इंद्रियों को धारण किया है, क्या ये इंद्रियां हमारे लिए ये अनुकूल है या प्रतिकूल है? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर जो बताया गया है सर्विस एट द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड मुकुंदा, सर्विस, तो सेवा हम किससे कर पाएंगे? इंद्रियों से ही सेवा कर पाएंगे। तो वही इंद्रियां जो हम धारण किए हैं, हमारे बद्ध जीवन का एक ये लक्षण है, वही हमारे मुक्त जीवन की एक पूंजी बन सकती है, की टू अवर लिबरेशन, द सेम सेंसेस। इसलिए ये श्लोक आज हमने लिया। तो अब अर्जुन को भगवान कौंतेय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कौंतेय का अर्थ है कुंती के पुत्र। तो हमारे आचार्य इस पर टीका किए हैं कि कुंती देवी जब वो अविवाहिता थी, तब कुंती देवी उनके जो पिता उस समय कुंती भोज, राजा कुंती भोज के महल में, तो दुर्वास मुनि आए। अब देखिए, दुर्वास मुनि ये एक ऐसे साधु हैं कि लोग थोड़ा दूर से सेवा करते हैं उनकी, बहुत गर्म मिजाज के, शॉर्ट टेम्पर, सांप की तरफ फुफकारता। तो दुर्वास मुनि की सेवा अविवाहिता छोटी सी कुंती उनको लगा दिया। अब देखिए, बड़े बड़े दिग्गज थरथर कांपते थे दुर्वास मुनि, और ये एक बालिका। तो सोचिए, एक बालिका को इतने बड़े खूंखार साधु के सामने खड़ा कर, बहुत खूंखार दुर्वास मुनि। और दुर्वास मुनि ऐसे कि एक तो शॉर्ट टेम्पर उनका, और उसके ऊपर बताया गया है कि दुर्वास मुनि वो कब आ जाए कहां पर कोई ठिकाना नहीं, कब पहुंच जाए। ज्यादातर वो बिना टाइम बिना नोटिस पहुंचते हैं, और फिर यदि उनको कोई उनकी सेवा करना चाहे, मान लीजिए कोई भोग उनको चढ़ाना चाहे, कुछ प्रसाद वगैरह खिलाने के लिए, तो बताया गया है कि उनके खाने का कोई ठिकाना नहीं कि कब क्या खाएंगे, और उनको कुछ परोस दिया जाए तो कब क्या उन्हें पूरा शॉर्ट सर्किट कर देगा, शूज उड़ जाएगा। ये इसलिए कि आज तक बताया गया कि आज तक दुर्वास मुनि को क्या पसंद है क्या ना पसंद है किसी पता नहीं लगा है। अब देखो, ऐसे व्यक्ति को सर्विंग करना बहुत डेंजर होता है कि आपको कोई बताया जाए, अरे ये पिछली बार जब आए थे हमारे घर में तो इनको ना वो खिचड़ी अच्छी लगी थी, तो चलो खिचड़ी बनाते। तो वो आए और आप खिचड़ी बनाए, और वो क्या बनाए, मंदिर में तो खिचड़ी खाता हूं दिन भर, इधर भी खिचड़ी बना दिया। तो कोई इतना, इसको बोलते हैं इनडिसाइसिव, कि पिछले हफ्ते तो इतना चाव से खिचड़ी पे खिचड़ी खाए जा रहे थे और अभी हमारी खिचड़ी बना रहे। तो दुर्वास मुनि ऐसे कोई ठिकाना नहीं कब क्या। इसे एक बार मुझे याद है, एक हमारे इस्कॉन के सन्यासी बंबई में, तो महाराज ने मुझे कहा कि इनकी सेवा को इनको पूछो, कुछ जरूरत है। तो मैंने उनको पूछा कि क्या लेना चाहेंगे, तो बोले समथिंग लाइट डिनर में। तो अभी लाइट तो बहुत कुछ होता है, मैंने कहा, मैंने शुरू किया, मेनू कार्ड निकाला अपना, लाइट मेनू कार्ड, मैंने कहा कुरमुरा टू लाइट, अच्छा ठीक है। तो फिर अच्छा उसका भेल बना दें, थोड़ा हैवी हो जाएगा, नहीं वो भी नहीं। तो फिर उपमा नहीं, पोहा नहीं, सूप नहीं, खिचड़ी नहीं। मैंने कहा अभी और क्या, अभी कौन सा कैटेगरी होता है, अभी लाइट सेमी लाइट हैवी सेमी लाइट हैवी के बीच में क्या है ये। तो फिर उन्होंने बोला इडली बनाओ। अभी इडली के लिए एक रात पहले आटा लगाना पड़ता है, वो पीस पास के रखना पड़ता है, अभी तुरंत इडली। तो हमारे डिवोटी का रेस्टोरेंट है बगल में, हिंद माता करके, तो मैंने कहा ठीक है, उनके पास तो उनका ही रेस्टोरेंट है तो इडली तो वहाँ पे हर समय मिलती। तो मैंने कैसे तो वहाँ पर गया, वहाँ पर से जाके लेके आए, तो बोले भूख मर गई। तो मुझे दुर्वास मुनि की याद आ रही थी, खाली फर्क ये था कि ये गुस्सा नहीं कर रहे थे। तो सोचिए कि ऐसे व्यक्ति को सर्विंग करना, और वो भी एक बालिका, बहुत ये डेंजर का काम है। लेकिन कुंती, इनके विषय में बताया गया है कि उनको आशीर्वाद दिया दुर्वास मुनि ने, केवल प्रसन्न नहीं हुए, दुर्वास मुनि ने आशीर्वाद दिया कुंती महारानी को। तो पॉइंट ये है कि भगवान कौंतेय कह रहे हैं अर्जुन को इस श्लोक में कि कुंती अपनी सेवा के द्वारा जो दुर्वास मुनि का मन हर समय उनकी इंद्रियां हर लेती हैं, उसको वश में कर लिया। ये आज के श्लोक का कनेक्शन है, कुंती महारानी ने जो सेवा की, क्योंकि दुर्वास मुनि के विषय में बताया कि उनका मन उनकी इंद्रियां हर समय हर लेती थी। तो उनके मन को और उनकी इंद्रियों को वश में करने के लिए कुंती महारानी जैसी सेविका वो नियुक्त की गई थी। और भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, तुम उस कुंती के पुत्र हो, याद दिला रहे हैं कि तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारी जो माता, उनके अंदर क्या गुण थे, तो कम से कम तुम्हारे अंदर तो थोड़े तो कुछ आने चाहिए। इसलिए यतो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित, तो इसलिए कौन्तेय शब्द भगवान ने इस्तेमाल किया अर्जुन को अपनी माता के उस गुण को याद दिलाते हुए। अब अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था किम आसीत, कैसे बैठता है जो ऐसा योगी, स्थित प्रज्ञ योगी, वो कैसे बैठता है, तो ये प्रश्न हमें अजीब लग रहा होगा जब अर्जुन ने पूछा क्या ये कोई प्रश्न हो, कैसे बैठता है, कैसे बैठते हैं सब, जैसे सभी बैठते हैं वैसे ही बैठता होगा। भगवत गीता का दिव्य उपदेश आदान प्रदान चल रहा है, उसमें ये प्रश्न पूछ कैसे बैठता है। तो यहां पर हमारे आचार्य टीका किए हैं कि किम आसीत की व्याख्या भगवान ने इस प्रकार से की कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति अपने मन का अंग रक्षक बनता है। बैठने का अर्थ है कि जो बुद्धि है वो मन को और इंद्रियों को बिठा के रखती है। जो हर समय मन और इंद्रियां यहां वहां भागती रहती हैं, तो स्थिर बुद्धि जिसकी है वो अंगरक्षक बनकर कि कोई न तो इसको अटैक कर पाएगा, न मेरे अनुमति से ये मन और इंद्रियां कहीं और जा पाएंगे। तो इसलिए स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति किम आसीत, इस प्रकार से वो अपने मन को और अपनी इंद्रियों को बिठा कर रखता है। बिठा कर रखने का अर्थ है अपने संरक्षण में रखता है। अब शास्त्रों से हम कुछ उदाहरण लेंगे जिसमें बताया गया है कि कैसे केवल भक्ति योग ही ये परम दृष्टवा और ये जो हरंती मन है, परम दृष्टवा दिलाकर हमारा जो मन हर लिया जाता है इंद्रियों के द्वारा, उसमें उसको पकड़ लेता है केवल भक्ति योग ही। तो सबसे पहले उदाहरण इनका है, कालिदास, इनके विषय में सुना होगा, बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान और कवि कालिदास, जो कि राजा भोज के राज्य के एक रत्न थे। कालिदास सुना ना, राजा भोज गंगुतेली, तो राजा भोज के राज्य के ये एक रत्न। लेकिन कालिदास के विषय में बताया गया है कि वो यहां पर एक झाड़ू लगाने वाली दासी के प्रति आकर्षित हो गए। तो ये उदाहरण इसलिए दिया गया है कि वो विद्वान थे लेकिन परम दृष्टवा प्राप्त नहीं हुआ था। पूरे वैदिक वांग्मय और शास्त्र में पारंगत लेकिन परम दृष्टवा प्राप्त नहीं हुआ, तो यहां पर इस प्रकार का आकर्षण उनके जीवन में बताया गया है। आगे शिवजी, अब श्रीमद् भागवत में एक कथा है कि जब भगवान शिवजी ने यह सुना कि विष्णु का एक ऐसा अवतार हुआ है जिसका दर्शन मैंने नहीं लिया अभी तक, मैं परम वैष्णव जो हूं अभी तक, कौन सा अवतार? मोहिनी मूर्ति। और मोहिनी मूर्ति का जो अवतार है वो बहुत फेमस हो चुका था कि भगवान विष्णु एक सुंदर स्त्री के रूप में अवतरित हुए। ये आज तक कभी इतिहास में नहीं हुआ कि भगवान विष्णु का कोई ऐसा अवतार एक स्त्री के रूप में, और वो भी ऐसी स्त्री कि देखते ही किसी का मन पागल हो जाए। तो भगवान शिवजी बहुत उत्सुक हुए और सभी आके भगवान शिवजी को बोल रहे थे देवतागण, अरे आपने देखा कि नहीं मोहिनी मूर्ति का अवतार? नहीं देखा। हट, क्या मिस कर दिया? मिस यूनिवर्स को मिस कर दिया, असली मिस यूनिवर्स ओरिजिनल, मिस क्रिएशन पूरा उसको मिस कर दिया। तो सभी लोग आके ऐसे शिवजी को चिढ़ा चिढ़ा के जा रहे थे, अरे क्या फोटो निकाली क्या? नहीं फोटो वोटो। तो अब भगवान शिवजी इतने आतुर हुए, ओ गए भगवान के पास, मैं मेरे लिए पर्सनली एक और बार रिपीट रिपीट परफॉर्मेंस। तो उनका इतना क्लोज रिलेशनशिप है शिवजी और भगवान का। तो अब भगवान ने शिवजी को पूछा, पार्वती से परमिशन लेके आए हो कि नहीं आए हो? वो बहुत महत्वपूर्ण है। बोले अरे आपको क्या लगता है? अरे मैं पूरा संयमी आदमी हूं। तो भगवान बोल रहे हैं, अच्छा संयमी हो? अरे मेरे जैसा संयम किसका है? मेरे जैसा तपस्वी कौन है इस पूरे सृष्टि में? तो भगवान शिवजी जो इतने बड़े तपस्वी हैं, तो फिर जब भगवान ने, तो भगवान ये खाली कहकर अपना अवतार लिए, गुड लक ऑल द बेस्ट। फिर भगवान ने मोहिनी मूर्ति, तो भगवान ये बोले भगवान शिवजी को, भगवान विष्णु बोले शिवजी को कि फिर मुझे मत बोलना, मैं पहले चौकन्ना कर रहा हूं, वार्निंग दे रहा हूं। फिर जो आप लोग आप में और पार्वती में झगड़ा होगा तो मुझे मत बीच में बुलाना मीडिएटर के रूप। तो अब जैसे ही भगवान शिवजी ने मोहिनी मूर्ति का रूप देखा तो इतना आकर्षित हुए भगवान शिवजी कि मोहिनी मूर्ति के पीछे भागने लगे, जैसे कोई कामुक व्यक्ति काम वासना के वशीभूत होकर वो भागता है, वैसे इतने बड़े ये गुण अवतार ये मोहिनी मूर्ति के पीछे भागने लगे। लेकिन भगवान शिवजी के विषय में बताया गया है कि वो आकर्षित हो सकते हैं केवल भगवान श्री कृष्ण की योग माया शक्ति से। कालिदास वो आकर्षित हुए भगवान की महामाया शक्ति से। तो अंतर क्या था दोनों में? कि भगवान शिवजी वो कभी महामाया से आकर्षित नहीं हो सकते। यदि भगवान शिवजी को उनके तपस्या के धरातल से यदि कोई हिला सकता है तो केवल विष्णु की योग माया, महामाया में भी शक्ति नहीं। तो भगवान शिवजी जो मोहिनी मूर्ति से इतना आकर्षित हुए, तो फिर बताया गया है कि जैसे कालिदास जो इतने बड़े विद्वान थे, शिवजी जो कि इतने बड़े तपस्वी थे, लेकिन हरंती प्रसभम मनः, इंद्रियां जो प्रमाथिनी हैं। अगला उदाहरण महाराज पांडु का है। महाराज पांडु को श्राप मिला था ऋषि किंदिम के द्वारा। उन्होंने गलती से ऋषि किंदिम को मार चला दिया था, तो उन्होंने शाप दे दिया था कि जब भी हे पांडु तुम अपने पत्नी के साथ सहवास करने जाओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो महाराज पांडु अब ऐसा जीवन जी रहे थे, पूरा एक विरक्त का जीवन। उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया, वन में आ गए, लेकिन कुंती और माद्री उनके साथ उनकी सेवा करने के लिए आ गए। और ऐसे ऐसे प्रण पांडु ने लिए थे। महाराज महाभारत में बताया गया कि महाराज पांडु ने ऐसा प्रण लिया था कि मैं बिल्कुल भी विचलित नहीं होऊंगा, स्थित प्रज्ञ की पराकाष्ठा प्राप्त करने के इच्छुक ये महाराज पांडु। इन्होंने कह दिया था कि यदि कोई मेरा हाथ भी काट दे, एक व्यक्ति यदि मेरा हाथ काट रहा है और दूसरा व्यक्ति दूसरे हाथ पर मुझे मालिश कर रहा है, तो न तो मैं इससे प्रभावित होऊंगा, न तो मैं इसकी प्रशंसा करूंगा जो मेरी मालिश कर रहा है, न मैं इसका तिरस्कार करूंगा जिसने मेरा एक हाथ काट दिया। ऐसे स्थित प्रज्ञ की अवस्था को मैं प्राप्त कर लिया था। हरंती प्रषभम मना, फिर भी एक दिन माद्री के साथ जब उन्होंने संग कर लिया, वो जो मन वो हर्षित हो गया, वो मन जो हर लिया गया इंद्रियों के द्वारा, तो महाराज पांडु वो खत्म हो गए, फिनिश्ड। तो ये महाराज पांडु का उदाहरण दिया गया है कि जिन्होंने अपने प्रण ऐसे ऐसे उनके जैसे पत्थर पर लकीर होती है, ऐसे प्रण उन्होंने लिए थे और उनका पालन भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी हरन्ति मनः। अब हम उदाहरण लेंगे जो भक्ति योग में स्थित, जैसे हरिदास ठाकुर। अब हरिदास ठाकुर न तो कोई बहुत बड़े तपस्वी थे, न कोई बहुत बड़े विद्वान थे, न उन्होंने महाराज पांडु की तरह कोई बड़े बड़े प्रण या व्रत लिए हुए थे। हरिदास ठाकुर केवल भक्ति योग में लगे हुए थे, और वो भी भक्ति योग के कोई बहुत बड़े अंगों में नहीं लगे हुए थे, नवदा भक्ति में नहीं, केवल एक ही अंग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, केवल भगवान के नाम स्मरण, नाम संकीर्तन में। और साक्षात माया देवी आई, साक्षात माया देवी हरिदास ठाकुर को परखने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए आई। तो हरिदास ठाकुर का परम दृष्टवा ऐसा था कि माया देवी को शेव कराकर, अब देखिए ये कोई भी बड़े बड़े दिग्गज आचार्य भी नहीं कर पाए। बताया गया है कि वो माया देवी, हरिदास ठाकुर उस कुटीर से चले गए और माया देवी को बताया कि कैसे तुम यहां पर भक्ति करो, तो वो माया देवी तुलसी महारानी की पूजा करते हुए, हरिनाम लेते हुए उन्होंने शेव कर लिया। ये है स्टेज कि जो परम दृष्टवा के उस उत्तम रस तक पहुंच चुका है, वो माया देवी को भी इनिशिएट कर सकता है हरे कृष्णा में। हम लोग तो कितने इनिशिएशन ले चुके हैं माया देवी से, अलग अलग तरीके, अलग अलग योनियों में। यहां पर माया देवी को हरिदास ठाकुर ने भक्त बना दिया। और अंतिम उदाहरण इस श्रृंखला में सुखदेव गोस्वामी का है कि सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष के जैसे ही जन्मे, इंग्लिश में बोलते ना बर्थडे सूट में निकल गए, पता है बर्थडे सूट, नग्न अवस्था में 16 वर्षीय सुखदेव गोस्वामी जो कि इतने सुंदर दिखने वाले, वो निकल पड़े जंगल की ओर पूर्ण रूप से विरक्त। और उसी जंगल में कुछ युवतियां, वो भी सुखदेव गोस्वामी के ही हम उम्र, वो भी स्नान कर रही थी निर्वस्त्र। लेकिन बताया गया था कि सुखदेव गोस्वामी को जब इन्होंने देखा तो उनके मन में विरक्ति हुई। अब ये इस भौतिक संसार में असंभव है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जैसे इंद्रिय निग्रह, जो उत्तम रस का आस्वादन करने वाले, तो बताया गया है कि सुखदेव गोस्वामी इतने प्रसिद्ध हो चुके थे अपने इंद्रिय निग्रह की वजह से कि महाराज जनक वो परखना चाहते थे कि सुखदेव गोस्वामी की क्या शक्ति है, कितना उनमें इंद्रिय निग्रह है। तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को अपने महल में बुलाया और सुखदेव गोस्वामी की जिह्वा पर एक शक्कर की डली रखी, शुगर क्यूब। अब देखिए, शक्कर की डली किसी की जिह्वा के ऊपर रखी जाए तो क्या होगा, क्या होगा, क्यों पिघलेगा, क्यों वो डली पिघलेगी शक्कर की। हाँ, जो मुंह में लाल आती ना, लाल जिसे बोलते हैं, नहीं नहीं वो थूक नहीं बोलते उसको, जब कोई बहुत अच्छी वस्तु हमारे खाने लाए है ना, तो उसमें से लाल टपकती है ना। हाँ, सलाइवा है, जब हम गटर को देखते तब भी सलाइवा बाहर निकलता है, लेकिन अगर आपको बटर हलवा सामने रख दें तो कोई ना वो वाला सलाइवा थूक नहीं करेगा साइड में, उसमें जो सलाइवा निकलता है वो अलग प्रकार का सलाइवा होता है। तो यहां पर जब सुखदेव गोस्वामी की जिह्वा पर महाराज जनक ने वो रखा, वो शक्कर की डली रखी, वो एज इट इज कुछ नहीं हुआ उस डली को। सोचिए, हम तो केवल स्मरण करने से मुंह में आ रहा है, सो रख दिया जाए तो क्या होगा। तो वो लेवल था सुखदेव गोस्वामी का इंद्रिय निग्रह। और वो क्यों, क्योंकि परम दृष्टवा, वो उस उत्तम रस का आस्वादन कर रहे थे, उसके वजह से उनके अंदर वैसा इंद्रिय निग्रह था। वो शुष्क नहीं था, इट वॉज नॉट ड्राई, इट वॉज सफ्यूज्ड विथ द मेलोज ऑफ भक्ति रस। तो अब भगवत गीता में भगवान काम रूपी शत्रु के तीन निवास स्थान बताए हैं। ये है तीसरा अध्याय 40वां श्लोक मेरे ख्याल से 3.40, जिसमें भगवान कहते हैं इंद्रिय मनोबुद्धिर यह अवस्थान, यह अवस्थास्तित हे मनः, जिसमें भगवान बोल रहे हैं कि काम जो है, लस्ट हैज थ्री सिटिंग प्लेसेस। कहां अड्डा जमा रखा है काम ने, काम वासना ने अड्डा कहां जमा रखा है, ये तीन अड्डे हैं, इंद्रियां, बुद्धि और मन। मतलब प्रभुपाद लिखते हैं उस तात्पर्य में, द मोस्ट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस लस्ट हैज कॉन्कर्ड इन अ ह्यूमन बीइंग। मतलब ये जाएगा तो कहां जाएगा, मन कैप्चर कर लिया, इंद्रियां कैप्चर कर ली और बुद्धि कैप्चर कर ली। तो यहां पर ये बताया गया है कि जब एक जगह से हम लस्ट को डिथ्रोन कर देते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसकी सत्ता फेंक देते हैं, कौन सी जगह, बुद्धि। तो बुद्धि को यदि हम भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में लगाएं, when we plug in our intelligence in कृष्ण भक्ति, Prabhupada says, then automatically the senses and the mind will be dethroned of lust। अपने आप, केवल एक ही करना है हमें, हमारी बुद्धि को, क्योंकि बुद्धि में वो शक्ति है जो हमारे इंद्रिय और मन को टोटली लस्ट से दूर कर सकती और लव से भर सकती, केवल लस्ट से दूर नहीं बल्कि लव से, प्रेम से भर सकती। तो यहां पर बताया गया है कि बुद्धि सर्वप्रथम करती क्या है, जैसे कि हम जब भक्ति में आते हैं, अब यहां पर देखिए मन बीच में है, एक तरफ इंद्रियां हैं एक तरफ बुद्धि है और मन बीच में है। तो जब हम भक्ति योग में लगते हैं तो बुद्धि से हम हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, मन नहीं लगा अभी तक, है ना। जब करना है 16 माला, मन नहीं लग रहा है लेकिन बुद्धि ने बोला है करो, ये लगेगा एक दिन, तो फिर माला उठाते हैं और फिर हम उंगली घुमाते हैं, इंद्रियों को लगा रहे हैं, जीवा से उच्चारण कर रहे हैं, अपने कान से श्रवण कर रहे हैं, ये सब हमारी इंद्रियां हैं। तो मन नहीं लग रहा लेकिन बुद्धि इंद्रियों को लगा रही है। और आज का भी श्लोक यही है कि यदि वो बुद्धि इंद्रियों को नहीं लगाएगी तो वो इंद्रियां करेंगी क्या। वो जैसे वो जीनी होता ना, जीनी, एक व्यक्ति के पास जीनी आ गया और जीनी ने बोला, वो अल्लाहदीन का चिराग होता है ना, उसमें से जीनी आता है, तो जीनी आ गया, जीनी बोला मेरे को तुरंत कुछ ना कुछ आदेश देते रहो, आदेश देते रहो, नहीं देगा तो खा लूंगा तुमको ही खा लूंगा मैं। तो वो व्यक्ति डरा हुआ, इसको कुछ ना कुछ तो देना, इसको लगाना है काम में, चलो ऊपर सीढ़ी ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, सीढ़ी ऊपर चढ़ो, खड्डा खोदो भरो, खड्डा खोदो भरो, क्योंकि उसको अगर एम्प्टी छोड़ेंगे तो इसको खा जाएगा वो। तो वैसी हमारी इंद्रियां हैं, कुछ तो दिखाओ मेरे को, या तो आस्था चैनल दिखाओ या फिर दूसरा वाला एमटीवी, या तो मेरे को मंदिर का प्रसाद खिलाओ, नहीं तो चलो उधर मेला लगा होगा, लास्ट दिन है नवरात्र। तो ये इंद्रियां हमारी इस प्रकार से हमें हर समय डिक्टेट करती रहती। तो बुद्धि जो भगवान बता रहे हैं, बुद्धि को क्या करना है कि बुद्धि को कुछ मत सोचो, कुछ निरीक्षण मत करो, सीधा भगवान की सेवा में लगते रहो, लगते रहो, लगते रहो, इंद्रियों को लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो। और जितना हम इन इंद्रियों को, वो बोलते हैं अंग्रेजी में, व्हेन वी बर्न अवर सेंसेस इन कृष्णा सर्विस द माइंड विल हैव नो पावर टू डिक्टेट द सेंसेस। तो यहां पर आज जोर इंद्रियों के ऊपर दिया गया है, मन के ऊपर नहीं, इंद्रियों के ऊपर जोर दिया गया है, भगवान इंद्रियों के विषय में ज्यादा बोल रहे हैं। अब कुछ हम उदाहरण लेंगे कि इंद्रियों की तुलना हमारे शास्त्रों में किन किन वस्तुओं से की गई है। जैसे डरिएगा मत, केवल फोटो है। तो इंद्रियों की तुलना हमारे एक आचार्य प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर, उन्होंने सर्प से की है। जैसे सर्प होता है और सर्प के फन होते हैं, तो जो सर्प के फन होते हैं वहां उसका जहर छिपा होता है, ये दिख रहे हैं ना दांत अंदर, तो यहां पर छिपा क्या है, इसका जहर। और आप देखो ये जो मदारी होते हैं, मदारी बोलते हैं ना, स्नेक चार्मर, सपेरा, सपेरा, वो जो बीन बजाता है और वो खोलता है और हाथ में यहां वहां, तो इतनी आसानी से वो उस अजगर के साथ कैसे व्यवहार कर रहा है, कैसे वो इतनी आसानी से, क्योंकि उसका जितना जहर है, उस कोबरा का जितना जहर है, उस भुजंग का जितना जहर है, उसने पहले निकाल दिया, कुछ नहीं उसके अंदर, वो चाहे कितना भी मारे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है कि जो कृष्ण भक्ति में लगता है, ये नहीं कि उसका सर्प मर चुका है, नहीं, सर्प जिंदा है, इंद्रियां हैं, लेकिन जहर निकाल दिया गया। तो जितना हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, जितना हम श्रवण करेंगे कृष्ण लीला का, जितना हम महाप्रसाद खाएंगे, जितना हम चरणामृत पिएंगे, जितना हम तीर्थ स्थानों में जाएंगे, जितना हम भगवान के अर्च विग्रह का दर्शन करेंगे, जितना हम नवदा भक्ति में लगाते रहेंगे अपनी इंद्रियों को, उतना क्या कर रहे हैं हम, उस जहर को निकाल कर उसके बदले अमृत भर रहे हैं। वो जो सपेरा होता है वो तो केवल जहर निकालता है, यहां पर तो कृष्ण भक्ति प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि इतनी शक्तिशाली है कि वो जहर को निकालकर उसके बदले उस सर्प में अमृत भर देगी। तो सोचिए एक ऐसा सर्प जो यदि किसी को काटता है तो अमर बन जाए, देखा कभी ऐसा सर कि वो किसी को काटे और वो व्यक्ति मरने के बजाय अमर हो जाए? ये है कृष्ण भक्ति के उत्तम रस को चखने का परिणाम। तो ये बहुत ही सुंदर उपयुक्त उदाहरण है कि हमें उस सर्प को नहीं मारना, उसके अंदर का जो जहर है उसे अमृत में परिणित कर देना है, और वो ये भक्ति योग के द्वारा। दूसरा उदाहरण, इंद्रियों की तुलना की गई है घोड़ों से। अक्सर हमने ये उदाहरण लिया है शरीर रूपी रथ के ये पांच घोड़े जो हमारी पांच इंद्रियां, और लगाम है मन, और लगाम को जो सारथी पकड़े हुए है वो कौन है? बुद्धि। तो ये जो घोड़े का उदाहरण दिया गया है कि जैसे लगाम को कितना छोड़ना है, कितना खींचना है, ये सारथी को पता होना चाहिए। हालांकि घोड़े बहुत शक्तिशाली हैं, लगाम पतली सी दिखती है, घोड़ों की तुलना में लगाम पतली सी दिखती है, लेकिन वही लगाम इतने शक्तिशाली घोड़ों को एक दिशा में लेकर जाती है। इसलिए और लगाम को पकड़ा कौन है वो ध्यान में रखना, बुद्धि। लगाम में कोई अपने आप में शक्ति नहीं है, हमारे मन में कोई शक्ति नहीं है, वो बुद्धि जब उस लगाम को, उस घोड़ों को सही खींचकर छोड़ती है, तब जाकर वो घोड़े जो हैं वो सही दिशा में जाते हैं। तो ये उदाहरण श्री प्रभुपाद एक बार अपने प्रवचन में दिए कि इसी शरीर रूपी रथ का उदाहरण। तो कल्पना कीजिए कि ये पांच घोड़े हैं, तो एक घोड़ा अपने दिशा में जा रहा है, दूसरा घोड़ा अपनी दिशा में, सब घोड़े अपनी अपनी दिशा में जा रहे हैं। तो सोचिए कि वो जो पैसेंजर बैठा है, पैसेंजर कौन है? आत्मा। उसका क्या हाल हो रहा होगा? जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, एक पहिया इधर जा रहा है, एक पहिया इधर जा रहा है, वो तीसरा वाला इधर जा रहा है, चौथा वाला जा रहा ही नहीं, तो कैसे चलाओगे गाड़ी? तो उसी प्रकार से जब तक ये इंद्रियां सभी एक दिशा में नहीं जाती, और एक दिशा में इंद्रियों को, ये घोड़ों को जाने के लिए वो लगाम सही पकड़नी हो। तो ये उदाहरण दिया गया है इंद्रियों की तुलना इससे की गई। और एक और उदाहरण दिया गया है इंद्रियों के विषय में, ये अति वेगशील नदी, रेजिंग रिवर जिसे कहते हैं। अब पता नहीं, हाल ही में ये एक मुझे एक समाचार एक वीडियो के द्वारा दिया गया था कि इंदौर में एक, कई लोग गए थे पाताल पानी करके जगह, पाताल पानी वो लोग पिकनिक मनाने गए थे। बहुत ही ये लाइव वीडियो है कि लोग गए वहां पर और वहां पर पानी का वेग बढ़ गया। तो ये वीडियो दिखाया कि एक परिवार पूरे उस पानी के वेग में कोई बहुत ऊंचे झरने से नीचे गिरकर खत्म हो गए। ये कोई मूवी का क्लिपिंग नहीं है, लाइव वीडियो। बाकी सब लोग आ गए, ये एक फैमिली और एक पत्थर पर अटक गए। YouTube में अगर आप जाएंगे, पाताल पानी इंदौर में ट्रेजेडी, पाताल पानी, पूरा बहते हुए जा रहे हैं वो लोग, जैसे इतना बड़ा वो झरना है उसके नीचे पत्थरों पर गिरकर मर गए। ये पानी का वेग, देखिए वही पानी जो हमें रोज चाहिए हमारे जीवन के लिए, हाँ जीने के लिए नहीं है, पानी पीने के, पीते हैं ना हम लोग कितना, वही पानी जब इस रूप में आता है तो खत्म कर देता है। तो इंद्रियों की तुलना ऐसे अति वेगशील नदी से की गई है कि जब तक कि उसे डैम नहीं बनाया जाता उसके, है ना, डैम क्या होता है कि उसका उसका जो वेग है उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वो पानी की आवश्यकता है, अगर आप ये सोचो कि ये नदी जो है इतनी वेगशील है तो इसको सुखा दो, नहीं तो फिर जियोगे कैसे, पानी चाहिए ना। तो फिर डैम, वो जो बांध बांधा जाता है वो इस प्रकार से बांधा जाता है कि फिर जितना पानी चाहिए उतना छोड़ो। एक यूरोप में एक घटना हुई थी कि एक चूहे के वजह से पूरा जो शहर था वो बाढ़ में डूब गया। इस चूहे ने डैम का जो उसका ओपनिंग होता है पानी का, उसको कुतर कर छोड़ दिया, तो उसमें से पानी धीरे धीरे आने लगा और वो जो क्रैक था जो चूहे ने किया था, वो क्रैक बढ़ते 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 वो पूरा बांध टूट गया। अब वो बांध बांध ना रहा और वो जो जितना शहर था उसको डुबा दिया उसने। तो ये इंद्रियां हैं हमारी, एक चूहा थोड़ा सा किधर क्रैक कर देता है तो हम लोग सोचते हैं, आगे वो श्लोक आने वाला है, ध्यायतु विषयान पुंसा, थोड़ा सा ध्यान हम विषय वस्तु पे करते हैं, सोचते हैं अभी तक तो तिलक है ना, कंठी माला भी है, नाम भी याद है मुझे मेरा, थोड़ा सा ट्रेलर देखा है मैंने किसका, माया का, तो वो उस डैम में छोटा सा क्रैक के समान है, इतने से क्रैक के समान है। जैसे एक कथा है इसके संदर्भ में, एक व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा था, तो उसके बहुत से अलग अलग कंडीशंस थे कि ऐसे होनी चाहिए, ऐसे मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए, इतनी वो परफेक्ट वाइफ जिसको बोलते हैं ना। तो उसके मित्र ने बोला, भैया देखो परफेक्ट वाइफ ना भूत की जैसे होती है, सब लोग उसकी चर्चा करते हैं लेकिन किसी ने देखा नहीं है ना, सब लोग भूत की चर्चा करते किसी ने देखा नहीं, तो इसको परफेक्ट वाइफ चाहिए थी। तो फिर इतने अलग अलग प्रकार के रिश्ते आए, लास्ट में उसके अनुसार सब कुछ परफेक्ट था। तो ये जो मित्र लेके आया था इस लड़की को, तो कहा कि सब कुछ इसका परफेक्ट है, खाली एक ही डिफेक्ट है, छोटा सा है, अंग्रेजी में बोलता है शी इज लिटिल प्रेग्नेंट। अब ये लिटिल प्रेग्नेंट का मतलब क्या होता है, वो लिटिल लिटिल थोड़ी रहने वाला है, तो लिटिल प्रेग्नेंट मतलब वो फिर 9 महीना होने वाला है उसका। तो वैसे ही यदि हम बोलें कि मेरी तो इतनी सी छोटी सी भौतिक इच्छा है, तो उसके समान है लिटिल प्रेग्नेंट, वो इच्छा अभी उसमें बीज आ चुका है, किसका, उस भोग विलास का बीज उसके अंदर आ चुका है, और ये ऐसा बीज है जिसका एबॉर्शन भी नहीं कर सकते आप। तो इसलिए ये इस नदी, अति वेगशील नदी के समान वो इंद्रियां हैं जो आज भगवान बोल रहे हैं हरण कर लेते हैं मन को। ये कौन है, ये पता नहीं मेरे को, यही एक फोटो मिला, चोर है ये, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चोरी कर रहा है, पाश्चात्य देश का है इसलिए सब बर्गलर अलार्म, पहले उसको सब डिस्कनेक्ट करके फिर इत्मीनान से चोरी करेगा अंदर जाके। तो ये उदाहरण दिया गया है कि हमारी इंद्रियां चोर के समान है। वो सुंदर श्लोक है, अंधस्य में ऋत विवेक महाधनस्य चौरैर प्रभु महाबलि भीरिंद्रिय नाम ध्येय मोहांधकूप कुहरे विनिपाति तस्य लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलंबम। इस सुंदर श्लोक में ये भक्त लक्ष्मी नरसिंह इनको प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके कर कमलों से आप मुझे उठाइए, कहां से, मोहांध कूप, इस अंधे कुएं में मैं गिर पड़ा हूं, और गिर नहीं पड़ा, मुझे गिराया गया है, किसने गिराया है, चोरों ने गिराया, चोरों ने, ये चोर आए, महाबली भीर, ऐसे चोर, बहुत शक्तिशाली ये चोर, और इन्होंने किया क्या, पहले पट्टी बांध दी, मुझे अंधा कर दिया, अंधस्य, पट्टी बांध दी मुझे अंधा कर दिया इन चोरों ने चोरी करने से पहले, और फिर मैं चिल्ला भी नहीं पा रहा हूं क्योंकि ऋत विवेक, जैसे आज के श्लोक में क्या है, हरंती प्रशभम मनः विपश्चित पुरुषस्य विपश्च, उसकी विवेक बुद्धि को हर लेते इंद्रियां। तो इन चोरों ने, चोरों का नाम क्या है, मेरी इंद्रियां, ये मेरी इंद्रियां महाबली भीर, और इन्होंने मुझे अंधा बना दिया और फिर मेरी विवेक बुद्धि हर ली, और चोरी क्या किया, महाधनस्य, महाधन की चोरी की है। कौन सा है वो महाधन, कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति करने की प्रवृत्ति, उसकी चोरी ये चोरों ने की है, ये इंद्रियों ने मेरी। और इतना ही नहीं, अंधा किया, मेरी विवेक बुद्धि हर ली, महाधन चुरा लिया, और चोरी वोरी सब करने के बाद मुझे अंधे कुएं में फेंक के गए लोग, सोचो मुझे फेंक के गए अंधे कुएं में। तो ये उदाहरण दिया गया है कि हमारी इंद्रियां जो हैं, हमारे कृष्ण प्रेम का हरण करने के पश्चात, उससे पहले हमें अंधा बनाती है, हमारा विवेक बुद्धि हर लेती है, और ये सब कुछ करने के बजाय हमें इस संसार चक्र में, अंधकूप में फेंक के जाती इंद्रियां। ये हमारी अनियंत्रित इंद्रियां। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं, लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलंबम, हे लक्ष्मी नरसिंह, आपके कर कमलों से आप इस मोह अंध कूप से मुझे बाहर निकालिए। तो चोरों की तुलना की गई है हमारे अनियंत्रित इंद्रियों। तो ये चार तुलनाएं, चार उदाहरण हमारे इंद्रियों के संदर्भ में। और अब अंत में भगवान को भी चोर बताया गया यहां पर, है ना, सबसे बड़े चोर कौन है, माखन चोर। तो मनोहर, मनोहर का अर्थ होता है मन का हरण करने वाले मनोहर। तो इंद्रियां, हमारी अनियंत्रित इंद्रियां हमारे मन का हरण कर लें, उससे पहले हमें ये देखभाल कर लेना है कि मेरे मन को मनोहर हरण कर लें। बिफोर अवर सेंसेस किडनैप अवर माइंड, लेट द सुप्रीम अट्रैक्टिव कृष्णा स्टील एंड किडनैप अवर माइंड। दैट इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ टुडेज वर्स, कि मन को तो किडनैप होना ही है, ये छोड़ दीजिए कि आपके पास रहने वाला है मन, नहीं, इसके नसीब में इसका अपहरण लिखा हुआ है। किसका अपहरण, मन का। आपको डिसाइड करना है कि कौन करेगा अपहरण, आपकी अनियंत्रित इंद्रियां या भगवान साक्षात। वी हैव टू डिसाइड कौन चाहिए हमें, हुम डू वी वॉन्ट, हुम डू वी वॉन्ट दैट अवर माइंड शुड बी किडनैप्ड बाय। तो इसके संदर्भ में सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण को जो माखन चोर बताया गया है, वो इसलिए बताया गया है कि हमारा ये जो शरीर है, ये एक एक मटके के समान है, नहीं, हमारा मन जो है मटके के समान है, और उस मन में जो कृष्ण प्रेम है वो माखन के समान है, और भगवान जो माखन चोर हैं वो प्रसिद्ध हैं, जैसे ही वो कृष्ण प्रेम को देखते हैं, उस माखन को देखते हैं तो चुरा लेते हैं। लेकिन वो होना चाहिए, खाली मटका या फिर माखन के बदले हमने डुप्लीकेट कुछ डाल दिया अंदर, जो दिखता है माखन की तरह लेकिन है डालडा, डालडा मालूम, तो भगवान डालडा चोर नहीं है, डालडा की चोरी कौन करता है, इंद्रियां हमारी। तो अभी तक जो इंद्र इतना डालडा भर रखा है, उसके बदले हमें असली माखन वो रखना है, तब जो मदन गोपाल जी हैं, जो प्रसिद्ध हैं माखन चोरी करने के लिए, वो हमारी इसकी चोरी करेंगे। तो अब अंत में ये दो, क्योंकि हम अपहरण की बातें कर रहे हैं, तो ये शास्त्र में दो अपहरण हुए थे प्रसिद्ध, टू किडनैपिंग्स, फेमस किडनैपिंग्स। एक तो सीता मैया का अपहरण हुआ और एक रुक्मिणी देवी का अपहरण हुआ। दोनों में अंतर क्या है? सीता वॉज किडनैप्ड बाय पर्सोनिफाइड लस्ट एंड रुक्मिणी वॉज किडनैप्ड बाय पर्सोनिफाइड लव। अब इसको यदि हम और निरीक्षण करें तो सीता, इनके विषय में बताया गया है, यही नासिक में हुआ, नासिक धाम में हुआ, ये कल दशहरा है, कि इस लस्ट के ऊपर लव की विजय कैसे हुई, राम जो पर्सोनिफाइड लव है। तो सीता देवी, इनके विषय में बताया गया है कि सीता जब उन्होंने वो सोने के मृग को देखा तो रामचंद्र जी से मांगा कि मुझे चाहिए। रामचंद्र जी बोले कि ये मायावी है, लेकिन फिर भी सीता हट की कि नहीं मुझे चाहिए। तो बद्ध जीव उसी प्रकार से जब भगवान बोलते हैं कि ये माया है, लेकिन वो हट कर बोलता है कि नहीं मुझे चाहिए, तब फिर भगवान कहते हैं ऑल द बेस्ट। तो इतना ही नहीं, भगवान जाते हैं उसकी इच्छा पूरी करने के लिए। तुम इतना हट कर रहे हो, हटीला बन गए हो, तो तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान गए, लेकिन गुरु को छोड़ के गए। कम से कम ये गुरु सद्बुद्धि दे देगा, लेकिन बद्ध जीव इतना हटीला होता है कि गुरु को भी बहिष्कृत कर देता है। तो सीता ने किया क्या? लक्ष्मण तुम भी जाओ यहां से। तो जब बद्ध जीव गुरु और भगवान के प्रतिनिधि को बहिष्कृत कर देता है, तब रावण आता है। निश्चित फिर रावण आता है। यदि सीता लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करती, यदि वो लक्ष्मण, सोचो लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया, लक्ष्मण को तो भेज दिया तो अलग बात थी, वो भी नहीं करना चाहिए था। उससे पहले रामचंद्र को नहीं भेजना चाहिए था। अरे प्रभु राम बोल रहे थे मैंने 84 लाख योनियां बनाई है, नहीं है ऐसा, 84 लाख योनियों में ऐसा एक भी योनि नहीं है, मैं क्रिएटर हूं, नहीं मुझे तो चाहिए। और प्रभु श्री राम साक्षात उनके साथ होते हुए ये इच्छा उन्होंने की, हालांकि वो भूमिका निभा रही है हमको सिखाने के लिए, सीता देवी कोई वो मोह में नहीं पड़ी थी, हमें सिखाने के लिए। तो ये सिखाया हमें कि जब हम माया के पीछे, वो मायावी मृग के पीछे भागते हैं, और इस हद तक भागते हैं कि प्रभु श्री राम को अपनी सेवा में लगाने के लिए कि मुझे वो चाहिए, मेरी सेवा में लगो, और यहां तक कि गुरु को बहिष्कृत कर देते हैं, तब काम रूपी रावण आता है भेष बदलकर हरण करने के लिए। तो ये है सीता हरण। आज के श्लोक में भी जो भगवान कह रहे हैं वही है कि जब कोई उस उत्तम रस के आस्वादन को नहीं करता और वो प्रमाथिनी जो उसकी इंद्रियां हैं उसके वशीभूत हो जाता है, तो वो उसके मन को हर लेती है। और इसके विपरीत है रुक्मिणी देवी, कि रुक्मिणी देवी जिन्होंने ऐसा श्रवण किया भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा गुणों का, तो रुक्मिणी देवी वो पत्र लिखी भगवान श्री कृष्ण को कि आप आओ और मुझे किडनैप करके लेके जाओ। तो यहां पर रुक्मिणी देवी का जो किडनैपिंग हुआ वो भगवान श्री कृष्ण को प्रिय था और वो उनकी भक्ति के लिए अनुकूल था रुक्मिणी देवी की। तो हमें इन दोनों उदाहरणों से क्या सीखना है? सीता और रुक्मिणी के उदाहरण से ये सीखना है कि क्या हम भगवान श्री कृष्ण को वो प्रेम पत्र लिख रहे हैं कि नहीं, कि भगवान आकर हमारे मन को किडनैप करें, या हम केवल भगवान से ये मायावी मृग मांग रहे हैं सीता की तरह? आर वी फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ रुक्मिणी राइटिंग दैट लव लेटर टू कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ अवर भक्ति दैट प्लीज कृष्णा कम एंड किडनैप माय माइंड एंड सेंसेस, और आर वी फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ सीता आस्किंग राम टू गेट सम सेंस ग्रेटिफिकेशन फॉर आवर सेल्व्स? What are we, who are we following? That is the million dollar question. Kidnapping तो होने ही वाली है, यहां पर हमें सीता देवी के पद चिन्हों पर चलना है या रुक्मिणी देवी के पद चिन्हों पर चलना है? तो वो लव लेटर, जो ओरिजिनल लव लेटर रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को लिखा, वो किसके बलबूते पे लिखा? जो उन्होंने श्रवण किया था। तो जितना हम पक्का श्रवण करेंगे उतना दम आएगा उस लव लेटर में, और वो लव लेटर क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जितना हमारा भगवान श्री कृष्ण के गुणों का, उनके लीलाओं का श्रवण पक्का होगा रुक्मिणी देवी जैसा, उतना ही हमारा जो प्रेम पत्र है वो भगवान श्री कृष्ण को इतना आकर्षित करेगा कि भगवान आएंगे रथ पर और हमें किडनैप कर अपने धाम ले जाएंगे। बोलो भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय, रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की जय। और ये है आज जो भगवान ने अर्जुन को श्लोक का तात्पर्य सुनाया कि इस प्रकार से अर्जुन तुम अपने मन को मनोहर के हाथ में देखकर उसका हरण करवाओ। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? तो जैसे हमने, हाँ आपका प्रश्न है। जैसे मान लीजिए एक मैग्नेट है, अब अगर मैग्नेट की तुलना भगवान से की जाए और 10 लोहे के टुकड़े पड़े हुए हैं, है ना, तो चुंबक में तो शक्ति है पूरे 10 लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने की, लेकिन आप देखते हो एक ज्यादा आगे बढ़ गया है, दूसरा थोड़ा उसके पीछे है, तीसरा और भी पीछे है, और एक तो हिला ही नहीं है। क्यों क्यों? कोटेड बाय, जंग लगा है, जंग, उसको जंग लगा हुआ है। जितना जंग का कोटिंग ज्यादा होगा उतना टाइम लगेगा उसको चुंबक की ओर आगे अग्रसर होने के लिए। तो ये प्रोसेस क्या है हमारा, कि अगर हमको ये महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर लस्ट का, प्राइड का, एंगर, जो भी कुछ ये अनर्थ हैं, 6 अनर्थ, ये 6 अनर्थों का जो कोटिंग इतना है, तो ज्यादा घिसाई करनी पड़ेगी ना। जैसे भक्ति तीर्थ महाराज, भक्ति तीर्थ महाराज वो जब वो ब्रह्मचारी थे, उनका नाम था घनश्याम प्रभु, तो वो सुबह 2:30 बजे उठ के माला शुरू कर देते थे अपनी करना, सुबह 2:30 बजे। एक और प्रभुपाद के डिसाइपल भक्ति वृषम माधव महाराज, तो उनकी भी आदत थी कि वो मंगलारती से पहले उनकी कुछ 32 माला हो जाती थी। तो एक मंदिर में वो उठे, ये भक्ति विश्रम माधव महाराज उठे, और उन्होंने देखा कि उनसे भी पहले कोई उठ के जप कर रहा है, तो वो ढूंढे कि कौन है, पता लगा भक्ति तीर्थ महाराज। तो पूछे कि आप रोज इतनी जल्दी उठ के करते हैं? बोले हाँ। और उन्होंने बहुत सुंदर एक वाक्य कहा कि क्यों वो करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं म्लेच्छ परिवार में पैदा हुआ, इतने कुकर्म मैंने किए हैं, इतने मेरे अनर्थ मुझे तकलीफ दे रहे हैं, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ रहा है जो बाकियों को इतना नहीं डालना पड़ता है। क्योंकि उनका रस्ट का कोटिंग इतना गहरा नहीं है, इसलिए मुझे ज्यादा एफर्ट डालकर उसे इसी जन्म में साफ कर भगवान जो चुंबक के रूप में आकर्षित हैं उसे उससे आकर्षित मैं हो जाऊं। तो आप जो बोल रहे हो 10 लोग कर रहे हैं लेकिन उनका जो जंग का कोटिंग है उस पर डिपेंड करता है। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की। तो जैसे हमने आपको सूचित किया, अगले बुधवार को आप लोग सब आमंत्रित है एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम हमारा इस साल की शरद पूर्णिमा कार्तिक का महीना जो प्रारंभ हो रहा है, दामोदर अष्टकम, दीपदान, ये जो हम प्रतीक्षा में रहते हैं हर वर्ष, और इस वर्ष तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम जो पहली कार्तिक है श्री श्री राधा मदन गोपाल जी के सानिध्य में करेंगे, ये हमारा सौभाग्य रहेगा। इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप लोग आइए अगले बुधवार को शरद पूर्णिमा के कार्यक्रम में। हरे कृष्ण।